हनुमान से मिलकर श्री राम को लगा कि सुग्रीव के माध्यम से उनका कार्य अवश्य सिद्ध होगा। हनुमान दोनों भाइयों को लेकर सुग्रीव के पास आए, लेकिन सुग्रीव इतने भयभीत थे कि वो राम, लक्ष्मण और हनुमान को अपनी ओर आते देखकर किसी कंदरा में छिप जाए। और जब हनुमान राम लक्ष्मण को लेकर वन पहुंचे तो सुग्रीव और दूसरे वानरों को ना पाकर चकित हो गए।
महाराज, सुग्रीव कहां चले गए? पता नहीं घड़ी घड़ी क्या हो जाता है उन्हें। अभी तो यहीं थे पर अभी कपूर की तरह उड़ गए। अब तो ऐसे ही हो गए हैं, पत्ता भी खड़के तो उछल कर पहाड़ पर चढ़ जाते हैं।
हनुमान, कहीं वो हमें ढूंढने तो नहीं निकल गए?
मार्ग तो एक ही है भैया, वो कहीं दिखाई नहीं पड़े। मुझे लगता है कि वो आसपास ही होंगे।
आप दोनों यहीं रहें प्रभु, मैं उन्हें देखता हूं। महाराज सुग्रीव, इनकी बातों से तो लगता है कि ये हमारे मित्र हैं।
हाँ हाँ, इनकी इनकी मधुर वाणी सुनकर मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। चलो इनके पास चलकर देखते हैं।
महाराज, महाराज सुग्रीव, कहाँ हैं आप?
हनुमान, हनुमान, मैं यहाँ हूँ हनुमान।
आप वहीं रुकिए महाराज, मैं आ रहा हूँ।
चलिए प्रभु।
महाराज सुग्रीव, ये हैं अयोध्या के राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण। इन्हें आपकी सहायता चाहिए महाराज।
अहो भाग्य मेरे, इस ऋष्यमूक पर्वत पर आपका स्वागत है। श्री राम, कहिए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं?
हम लंकापति रावण को परास्त करना चाहते हैं वानरराज। उसने हमारी भार्या का हरण किया है,
और वो भी हमारी अनुपस्थिति में।
ओह, तो हमारी और आपकी दशा एक सी ही है। आपको मेरी आवश्यकता है और मुझे आपकी।
क्या आपकी भार्या को भी?
नहीं नहीं, मेरी भार्या को रावण ने नहीं, मेरे अपने भाई बाली ने ही अपने वश में कर लिया है। ऐसा अनर्थ क्यों किया उसने? क्या चाहता है वो?
एक छोटी सी घटना के कारण वो मेरे प्राणों का शत्रु हो गया है। उसने मुझे राज्य से भी वंचित कर दिया है। श्रीराम, राज्य और दाम्पत्य सुख दोनों से वंचित कर दिया उसने।
धीरज रखिए सुग्रीव, हम अवश्य आपको न्याय दिलाएंगे।
प्रभु, यदि आपकी और महाराज सुग्रीव की शक्ति एक साथ मिल जाए तो उसकी समानता संसार में कोई नहीं कर सकता। महाराज सुग्रीव माता जानकी को रावण से मुक्त कराएंगे और प्रभु श्रीराम बाली का वध करके महारानी तारा को मुक्त कराएंगे।
ऐसा ही होगा हनुमान।
तो फिर आप दोनों अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता की शपथ लें और एक दूसरे की सहायता का वचन दें।
अवश्य हनुमान। आइए महाराज सुग्रीव, मेरे साथ इस अग्नि के ऊपर हाथ कीजिए।
स्वातिनाह इंद्रो वृत्रश्रवा, स्वातिनाह पूषा विश्ववेदाः, नास्तक्षो अरिष्टनेमि स्वास्तिनाह बृहस्पति दधारु।
बोलो प्रभु श्री राम की
जय,
महाराज सुग्रीव की
जय।
आपको तो यह अवश्य स्मरण होगा श्री राम कि इस घटना को कितने दिन बीते हैं।
जिस दिन से यह घटना हुई उसी दिन से हम देवी सीता की खोज में लगे हैं सुग्रीव। गीदराज जटायु ने हमें बताया कि रावण उन्हें वायु रथ पर बिठा कर ले गया है। वो बहुत विलाप कर रही थी।
ठहरिए श्री राम, ठहरिए।
तभी वनराज सुग्रीव की आंखों के सामने पूरी घटना कौन थी। वो भागते हुए पास की कंदरा में गए और कुछ ऐसे प्रमाण लाए जिसे देखकर राम और लक्ष्मण दोनों की आंखें छलक गई।
ये देखिए, देखिए, कहीं ये आभूषण देवी सीता के ही तो नहीं है। ये कहां मिले आपको? ये सारे आभूषण सीता के ही हैं। ये बाजूबंद, ये करघनी, ये हार, ये सब सीता के ही हैं।
ये मुझे ही मिले हैं श्री राम। मैं इसी पर्वत पर विचरण कर रहा था, तभी आकाश मार्ग से जाता हुआ एक रथ दिखाई दिया। अवश्य वो रावण का ही रथ था। देवी सीता विलाप कर रही थी। बचने का कोई उपाय न देखकर उन्होंने ये आभूषण नीचे फेंके, शायद इसलिए कि हम जान सके कि रावण उन्हें किस मार्ग से लेकर गया है।
आपने ठीक समझा सुग्रीव।
तब तो ये तय है श्री राम कि देवी सीता को रावण लंका ही ले गया है। अब आप जितनी जल्दी मुझे राज्य दिला देंगे उतनी जल्दी हमारे पास सेना होगी और हम सीता माता का पता लगा लेंगे।
वानर राज, आपका राज्य भी शीघ्र मिल जाएगा। आपकी बातें सुनकर हमें पूरा विश्वास हो गया है कि आप भाभी का शीघ्र पता लगा लेंगे।
किंतु हमें संतोष कैसे होगा कि आप दोनों भ्राता किष्किंधापति बाले पर विजय प्राप्त करेंगे।
यह हम पर छोड़ दे वानर राज, उनकी भूल का दंड उन्हें अवश्य मिलेगा।
आप नहीं जानते, किष्किंधापति बाली एक बाण से 3 वृक्षों को भेद देता है। युद्ध कौशल में उसकी बराबरी का कोई नहीं।
यदि आपको विश्वास नहीं है तो अभी देख लीजिए सुग्रीव, मैं एक वाण से कितने वृक्ष भेद सकता हूं।
प्रभु श्री राम की
जय।
आप धन्य हैं श्री राम, आप धन्य हैं। आपने तो एक बाण से 7 वृक्ष भेद दिए। अब मुझे विश्वास हो गया कि आप मुझे न्याय दिला सकेंगे।
न्याय की बात कर रही हो सीते? किस न्याय की बात कर रही हो? क्या शूर्पणखा का अपमान न्याय था? क्या खरदूषण का वध न्याय था? बोलो सीते, यदि वो न्याय है तो हमने जो किया है वो भी अन्याय नहीं है।
तुम नहीं जानते लंकापति कि तुम्हारी बहन ने क्या किया था।
संसार का कोई ऐसा सच नहीं है जो लंकेश नहीं जानता। कोई ऐसी घटना नहीं है जिसका पता मुझे ना हो। मैं सर्वज्ञानी हूं, त्रिकालदर्शी हूं।
तुम्हारे लिए तो अनीति ही नीति है, अधर्म ही धर्म है, अनुचित ही उचित है लंकेश। इसलिए तुम्हें समझाना व्यर्थ है।
तुम्हें उन वनवासियों ने क्या कर दिया है सीते? तुम्हारी सोच बदल दी है उन्होंने। तुम सांसारिक रीति नीति भूल गई हो। अभी भी समय है, भूल जाओ वो सारे पाखंड, भूल जाओ उस राम को जिसके साथ तुमने इतने दुख सहे।
मृत्यु से मुझे भय नहीं है लंकेश। यदि तुम में इतनी ही शक्ति है तो उठाओ अपना खड़ग और काट दो मेरा शीश। वध करो मेरा, वध करो मेरा लंकेश, वध करो मेरा।
वध कीजिए श्री राम, वध कीजिए। उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है उसे इस संसार में रहने का। वो निरंकुश तो है ही, व्यभिचारी भी है श्री राम, व्यभिचारी भी है।
हम आपके साथ है वानरराज, जाइए बाली को चुनौती दीजिए, हम आपकी सहायता के लिए सदा आपके साथ हैं।
अब देर न करें महाराज, प्रभु श्री राम के होते हुए बाली आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
किंतु श्री राम आप?
मैं उस वृक्ष की ओट में रहूंगा और उचित समय पर प्रहार करूंगा।
महाराज बाली की, महाराज बाली की।
सेनापति, वो विश्वासघाती सुग्रीव जहां भी मिले उसे बंदी बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत करो।
महाराज, हमारे सैनिकों ने पूरा किष्किंधा छान मारा पर सुग्रीव का कहीं भी पता नहीं चला।
अत्याचारी बाली, कहां छुपा है तू? साहस है तो बाहर आ, बाहर निकल दोस्त। आज तेरा वध न किया तो मेरा नाम सुग्रीव नहीं, बाहर निकल।
सुग्रीव की चुनौती सुनकर बाली क्रोध से कांप उठा था, उसकी भ्रुकुटी तन गई। उसने अपनी विशाल गदा उठाई और सुग्रीव को सबक सिखाने के लिए निकल पड़ा।
ले सुग्रीव रघुनाथ हाथा, चला गरज बाली की ओर। ललकार उठा, हुंकार उठा, ललकार उठा, हुंकार उठा। लिए प्रभु प्रेम की डोर। रामायण।
मैं काल। श्री राम ने सुग्रीव को वचन दिया कि वे उसको उसका राज्य और उसकी पत्नी अवश्य वापस दिला देंगे, और सहायता का वचन पाकर प्रसन्न सुग्रीव ने भी बदले में देवी सीता को रावण की लंका से मुक्त कराने का वचन दिया। इस तरह किष्किंधा पर्वत पर यह तय हुआ कि सुग्रीव बाली के राज्य में जाकर उसे चुनौती देते हुए द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारें।
बाली, तू बोलता क्यों नहीं? अब कहा गया तेरा पराक्रम? चुप क्यों बैठा है तू? कोई उत्तर क्यों नहीं देता? बाली, यदि तू स्वयं को पराक्रमी समझता है तो निकल बाहर। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, यदि तुमने मुझे पराजित कर दिया तो मैं जीवन भर तुम्हारा दास बनकर तुम्हारी सेवा करूंगा। अब भी यदि साहस है तो आओ और मुझसे द्वंद्व युद्ध करो। आओ बाली, बाहर निकलो।
मैं आ रहा हूं सुग्रीव, मैं आ रहा हूं। आज तक तू कायरों की तरह ऋषिमुख पर्वत पर भागा भागा फिर रहा था, अपने प्राण बचाता छिप रहा था, किंतु आज लगता है कि तेरी अंतिम घड़ी आ गई है। जब किसी की मृत्यु आती है तो वो किसी न किसी तरह अपने मृत्युदाता तक आ ही जाता है। आ, मैं तेरा मृत्युदाता हूं और तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं।
किंतु बाली, आज तुम्हारा मृत्युदाता मैं हूं, तुम्हारा ही अनुज सुग्रीव, जो स्वयं चलकर तुम्हारे पास आया है।
ठहर कायर, मैं अभी तुझे मृत्यु देता हूं।
स्वामी, रुक जाइए स्वामी।
नहीं तारा, कोई मुझे चुनौती दे और मैं कायरों की तरह बैठा रहूं, ये मुझसे नहीं होगा।
स्वामी, पता नहीं क्यों आज पहली बार मेरा मन आशंकित हो रहा है कि आप सुग्रीव से लड़ने के लिए मत जाइए।
तारा, तारा, तारा! पाली ऐसे चूहों की तरह छिप कर नहीं बैठा रह सकता, और सुग्रीव मुझे चुनौती दे और मैं बैठा रहूं, ये असंभव है।
किंतु स्वामी, सुना है कि अयोध्या के दो राजकुमार उनकी सहायता के लिए आए हैं। वे दैवीय शक्तियों वाले हैं, और आज सुग्रीव अकेला लड़ने के लिए नहीं आया है, बल्कि उन शक्तियों को साथ लेकर आया है।
आज तक बाली को कोई पराजित नहीं कर सका। अरे, मैंने तो त्रिलोक जयी रावण का घमंड भी चूर किया है, तो उन अयोध्या के राजकुमारों को लेकर सुग्रीव क्या कर लेगा?
स्वामी, वो कोई सामान्य राजकुमार नहीं है, इसलिए मेरा मन आशंकित हो रहा है। ईश्वर के लिए आप मेरी बात मान लीजिए।
बाली, मैं जानता हूँ आज तुम बाहर नहीं निकलोगे, तुम कायर हो, कायर।
मैं आ रहा हूँ सुग्रीव, आज मैं तेरा अंत करूंगा।
अस कहीं चला महाभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। भिरे उभाओ बाली अति तर जा, मुठी कमारी महाधुनि गर्जा।
पाली और सुग्रीव दोनों में पहले तो गदा युद्ध हुआ, फिर भयंकर द्वंद युद्ध। दोनों ने एक दूसरे पर वज्र की तरह मुष्टिका प्रहार किया। वैसे ये तो पहले से ही निश्चित था कि इसी द्वंद युद्ध के बीच ही अवसर पाकर श्री राम बाली पर प्रहार करेंगे, किंतु ऐसा न हो सका, और अंत में बाली ने सुग्रीव पर कसकर मुट्ठी से प्रहार किया और सुग्रीव वहां से डरकर अपने प्राण बचाते हुए भागा।
श्री राम, आपने क्या किया? आपने उस पे प्रहार क्यों नहीं किया? मैंने कहा था वो मेरा काल है, वो मुझे मार डालेगा। देखिए, देखिए उसने क्या हाल किया है मेरा। अब मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा।
सुग्रीव, मेरे लिए धर्म संकट की बात ये थी कि तुम दोनों भाई बिल्कुल एक जैसे दिखते हो, इसीलिए मैंने बाली पर प्रहार नहीं किया कि कहीं बाली के स्थान पर बाण तुम्हें ना लग जाए। मैं भ्रमित था सुग्रीव।
फिर इसका क्या उपाय है प्रभु? इस तरह तो बाली का कभी वध नहीं हो सकता।
नहीं सुग्रीव, नहीं, बाली का वध होगा। इस भ्रम के हल के लिए ये फूलों की माला तुम अपने गले में पहन लो, जिससे कि मैं दोनों भाइयों में अंतर समझ सकूं, और फिर बाली को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। अब जाओ सुग्रीव, इस बार बाली का अंत निश्चित है।
सुग्रीव, लगता है आज तुम मरने के लिए फिर से आ गया है, पर इस बार तू प्राण बचाकर नहीं भाग सकता। मैं तुझे भागने का अवसर ही नहीं दूंगा।
अब सही अवसर है, अब बाण चलाता हूं बाली पर।
ये किसने किया मुझ पर प्रहार? तारा ने सत्य कहा था, ये अवश्य कोई दिव्य राजकुमार है। भी ऐसी शक्ति हो सकती है। निश्चित रूप से उन्होंने मुझ पर प्रहार किया है, क्योंकि राक्षस मानव और कपी से मेरी मृत्यु असंभव थी। फिर ये कौन हो सकता है?
बाली, मैं हूं राम, दशरथ नंदन राम।
श्री राम, तू आप ही है? आज आपके दर्शन करके मेरा जन्म सफल हो गया। मैं जानता हूं कि आपने मुझे व्याध की तरह छिड़कर क्यों मारा। मैं आपका शत्रु और सुग्रीव आपका मित्र कैसे हो गया? मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ था प्रभु?
सुनो बाली, अपने छोटे भाई की स्त्री बहन और पुत्र की स्त्री अपनी पुत्री के समान होती है। यदि इन्हें कोई बुरी दृष्टि से देखता है तो उसे मारने में कोई पाप नहीं होता। तुमने अपनी पत्नी के समझाने पर भी ध्यान नहीं दिया, और ये जानते हुए भी कि मैं सुग्रीव की रक्षा कर रहा हूं, तुमने उस पर प्रहार किया।
ठीक है प्रभु, इस संसार में तू सभी की मृत्यु निश्चित है, पर मेरा सौभाग्य है प्रभु कि मेरी मृत्यु के समय मेरे सम्मुख साक्षात प्रभु श्री राम खड़े हैं।
बाली, अंत समय में तुम मेरी शरण में आए हो, इसीलिए मैं तुम्हें परम पद प्रदान करता हूं।
मेरी एक और विनती है प्रभु, ये मेरा पुत्र अंगद है। अंगद, आओ पुत्र, आओ, पिताश्री। प्रभु, बल और बुद्धि में ये मेरे समान है, आप इसे अपनी शरण में ले ले, शरण में ले ले ना।
जैसा तुमने कहा वैसा ही होगा बाली, वैसा ही होगा। अंगद, आज से तुम सदा सुग्रीव की सहायता में रहोगे।
अवश्य प्रभु, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा प्रभु। ये मेरी माता है तारा।
मेरे लिए अब क्या आदेश है प्रभु?
तारा, तुम्हारा पद अब भी सुरक्षित रहेगा, तुम अब भी किष्किंधा की महारानी रहोगी। जब तक तुम जीवित हो तुम महारानी के रूप में ही सम्मान प्राप्त करोगी। लक्ष्मण, अब तुम जाकर सुग्रीव का राज्याभिषेक करो।
जैसी आज्ञा भैया।
राम का तो नाम ही ऐसा है जिसके लेने भर से ही सारे संसार की निधि मिल जाती है। सुग्रीव जो बाली के भय से वनों में भागे भागे फिरते थे, केवल राम का नाम लेकर ही राजघाट पा गए, और अंगद उनके दर्शन भर से ही युवराज हो गए। धन्य है श्री राम की माया।
हे लखन आओ अनुज, तब बोले प्रभु श्री राम, जा सुग्रीव ही दो राजपद, जा सुग्रीव ही दो राजपद, और हूँ अंगद युवराज।
रामायण
मैं काल हूँ। श्री राम की कृपा से सुग्रीव को उसकी पत्नी और किष्किंधा का राज्य दोनों ही प्राप्त हुए। पाप की राह पर चलने वाले बाली का अंतिम संस्कार किया गया। अंगद ने भी श्री राम की शरण स्वीकार की। सारी किष्किंधा में श्री राम और लक्ष्मण के साथ सुग्रीव और अंगद की जय जयकार होने लगी। किष्किंधा वासियों ने इन सब के बीच महावीर हनुमान को भी पूरा सम्मान दिया, जिनके कारण ये सब संभव हो सका था।
अयोध्या नंदन श्री राम की
जय।
किष्किंधा नरेश सुग्रीव की
जय।
महावीर हनुमान की
जय।
आज से महाबली सुग्रीव किष्किंधा के राजा होंगे और बाली पुत्र अंगद युवराज पद का गौरव बढ़ाते हुए राजकाज में इनकी सहायता करेंगे। और मैं ये भी घोषणा करता हूं कि बाली की पत्नी महारानी तारा का राजसी पद वैसे ही बना रहेगा जैसे पहले था।
अयोध्या नंदन श्री राम की
जय।
प्रभु, यह हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे रक्षक बनकर यहां पधारे। आपने मुझ पर जो कृपा की है उसे मैं जीवन भर नहीं भूल सकता।
मैं भी आज प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक हम देवी सीता का पता लगाकर उन्हें ससम्मान आप तक नहीं पहुंचा देते, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे।
महाराज सुग्रीव की
जय।
किंतु प्रभु, एक विनती है। आज से चतुर्मास आरंभ हो गया है, इसलिए आज से लेकर अगले 4 माह तक भारी वर्षा से इन वनों में आगे बढ़ना संभव नहीं हो सकेगा और देवी सीता की खोज में बहुत बाधाएं आएंगी। इसीलिए हमें आगे 4 मास तक प्रतीक्षा करनी होगी। प्रभु
बोलो हनुमान, यदि मैं ठीक नहीं कह रहा हूं तो बोलो।
हां प्रभु, महाराज सुग्रीव उचित ही कह रहे हैं। चतुर्मास तक माता सीता को ढूंढना कठिन है, और ढूंढ भी लिया तो सारी सेना ले जाकर युद्ध करना तो असंभव है। इसीलिए महाराज सुग्रीव जो कुछ भी कह रहे हैं उचित ही है।
जब आप सबका यही सोचना है तो मुझे स्वीकार है। तब तक मैं पर्युषण पर्वत पर ये 4 महीने काटूंगा और सुग्रीव के अगले निर्णय की प्रतीक्षा करूंगा।
इस तरह प्रभु श्री राम पर्युषण पर्वत पर रहकर वर्षा ऋतु के समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगे। देवताओं ने पहले से ही पर्वत पर एक गुफा बना रखी थी। उन्हें पता था कि राम वहां विश्राम करेंगे। समय बीतता जा रहा था और श्री राम इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब चतुर्मास का समय बीते और कब सुग्रीव की सेना सीता का पता लगाने के लिए निकले। इधर राम सीता को स्मरण कर रहे थे और उधर अशोक वाटिका में माता सीता श्री राम का स्मरण करके समय बिता रही थी।
सुंदरी सीता, अब भी तू मेरी बात मान ले। तेरा वो वनवासी पति अब नहीं आने वाला। अरे वो तो तेरे वियोग में न जाने कब का मर भी चुका होगा, और एक तू है कि अब तक उसकी प्रतीक्षा कर रही है। सुंदरी, अभी भी समय है। अपनी ये सुंदर आंखें खोल और उस वनवासी का ध्यान छोड़कर मुझसे विवाह कर ले। मैं तुझे लंका की पटरानी बनाकर रखूंगा।
दुष्ट रावण, इस भ्रम में मत रहना कि मेरे स्वामी नहीं आएंगे। वो अवश्य आएंगे, और तेरा विनाश होकर रहेगा।
विनाश शब्द लंकापुर के पास भी नहीं फटकता सीते। यहां जिनका मैं विनाश चाहता हूं उनका ही विनाश होता है। और यदि तू मेरी बात नहीं मानती तो तेरे पति का विनाश होगा। बस तू उस विनाश की प्रतीक्षा कर।
पहले तो तू अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर लंकेश, क्योंकि सबसे पहले वो तुझे ही लेने आ रही है।
मैं लंकेश हूँ, मृत्यु दाता लंकेश, मैं मृत्यु देता हूँ। अभी मृत्यु के पास इतना साहस नहीं कि वो मुझसे टकरा सके। देख सुंदरी, मैं तुझे अंतिम अवसर दे रहा हूं, नहीं तो तेरी ये कमल नाल सी कोमल गर्दन है ना, उसे इसी खड़क से अलग कर दूंगा।
रावण के कठोर वचनों से देवी सीता तनिक भी विचलित नहीं हुई। श्री जटा को तो लगा जैसे रावण सीता का वध ही कर देगा। उसने मन ही मन श्री राम का स्मरण किया कि किसी तरह ये संकट टल जाए।
लक्ष्मण, अब तो वर्षा ऋतु भी बीत गई लेकिन अभी तक सीता की कोई सूचना नहीं मिली। सुग्रीव ने भी कोई सूचना नहीं दी कि वो आगे क्या करने जा रहा है।
भैया, मुझे तो लगता है कि सुग्रीव किष्किंधा का राज्य और पत्नी पाकर सब कुछ भूल गया है। किष्किंधा के सिंहासन ने उसे अपना दिया वचन भी भुला दिया है। मैं सुग्रीव को उसका वचन भुलाने का दंड दूंगा।
नहीं लक्ष्मण, सुग्रीव को दंड देने की आवश्यकता नहीं है। बस उसे याद दिलाना है कि वो सत्ता सुख में अपना कर्तव्य भूल गया है।
ठीक है भैया, मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। हनुमान, मुझे सुग्रीव के पास ले चलो।
अरे ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है सुमित्र नंदन। आइए, आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए, पलक झपकते ही मैं आपको राजमहल तक पहुंचा दूंगा।
ठीक है, ये लो, मैं बैठ गया।
जय श्री राम। आप बैठ तो गए हैं किंतु एक बात का ध्यान रहे सुमित्र नंदन।
किस बात का हनुमान?
यही कि मुझे आप कसकर पकड़ लीजिए, क्योंकि कभी कभी मेरी गति बहुत बढ़ जाती है।
मुझे डरा रहे हो हनुमान?
नहीं सुमित्रानंदन, नहीं, बस मैं तो ऐसे ही ठिठोली कर रहा था समय काटने के लिए।
ओहो, तो ये बात है। मुझे क्या पता था कि महावीर हनुमान विनोद प्रिय भी है। आज पता चला कि वो तो हंसी भी करते हैं।
भैया लक्ष्मण सावधान, मैं अब नीचे उतर रहा हूं। समझ कर किष्किंधा का महल आ गया है।
सुग्रीव, सुग्रीव कहां छिपे हो? बाहर आओ।
हे ईश्वर, महावीर हनुमान के साथ क्रोध में भरे हुए लक्ष्मण।
महाराज, महाराज, महाराज।
द्वारपाल, क्या हुआ, ऐसे कांप क्यों रहे हो?
क्षमा करें महाराज, अयोध्या के राजकुमार श्री लक्ष्मण बहुत ही क्रोध में है और वो सीधे महल की ओर चले आ रहे हैं।
हे ईश्वर, ये क्या हो गया? किष्किंधा पति सुग्रीव को हनुमान का प्रणाम स्वीकार हो।
नहीं नहीं हनुमान, मुझे किष्किंधा पति मत कहो।
आज मुझे किष्किंधा पति कहलाने में लज्जा आ रही है।
किष्किंधा पति, आपके एक ही शब्द ने मेरे क्रोध को समाप्त कर दिया। मुझे तो लगा था कि आप अपना कर्तव्य भूल गए हैं।
हाँ सुमित्रा नंदन, मैं जानता हूं कि मुझसे भयंकर भूल हुई है। मैंने श्री राम को वचन दिया था कि वर्षा ऋतु के बाद देवी सीता की खोज आरंभ करूंगा, पर मैं सत्ता सुख में इतना चूर हो गया कि मुझे अपने कर्तव्य का ध्यान ही नहीं रहा।
तो किष्किंधापति, अब क्या आदेश है?
किष्किंधापति सुग्रीव का सिर लज्जा से झुक गया।
पर अब उन्हें श्रीराम के आदेश की प्रतीक्षा थी। हनुमान को साथ लेकर वो सीधे श्रीराम का आदेश लेने के लिए चल पड़े।
दौड़ चले सुग्रीव तब ले किष्किंधा सेना साथ और झुकाए शीश निज और झुकाए शीश निज जब चरण दिखे रघुनाथ
रामायण। मैं काल हूं। वर्षा ऋतु समाप्त होने तक श्री राम सीता का स्मरण करते हुए शरद ऋतु की प्रतीक्षा करते रहे। शरद ऋतु भी बीतती जा रही थी, किंतु सुग्रीव सत्ता सुख में इतने डूब गए थे कि श्री राम के इस कार्य को भूल ही गए। ऐसा ही होता है, अपने सुख में किसी को दूसरे का दुख दिखाई ही नहीं देता। जहां श्री राम सीता के बिना एक एक पल नहीं काट पा रहे थे, वहीं सुग्रीव सब कुछ भूल बैठे थे। पर राम के पास पहुंचकर उन्होंने क्षमा मांगी और माता सीता की खोज के लिए उनसे आदेश लिया।
मैं बहुत लज्जित हूं श्री राम, मैं तो सब कुछ भूल ही गया था, पर कुमार लक्ष्मण ने मुझे अपने कर्तव्य का स्मरण करा दिया। यदि आपका आदेश हो तो मैं अभी अपने सैनिकों को प्रस्थान का आदेश दूं।
जब आपको कर्तव्य का स्मरण हो गया वानरराज, तो मुझसे आदेश की क्या आवश्यकता है?
अब मुझे और लज्जित ना करें प्रभु, मैं अभी इसी क्षण देवी सीता की खोज के लिए अपने प्रमुख सेनापतियों को इस कार्य में लगा रहा हूं। उत्तर, पूरब और पश्चिम में हमारे वीर योद्धा आज ही प्रस्थान करेंगे।
सुग्रीव, सबसे महत्वपूर्ण दिशा दक्षिण है, इस दिशा में कौन जाएगा?
दक्षिण दिशा में नील, अंगद, जामवंत और हनुमान जाएंगे श्री राम।
किष्किंधापति, अब मुझे संतोष हो गया है कि आपके नेतृत्व में आपके वीर और पराक्रमी योद्धा सीता का अवश्य पता लगा लेंगे। आपका कार्य सफल हो।
प्रभु, आपकी कृपा से हमारा कार्य अवश्य सफल होगा। और जहां पर अंगद जैसा युवा नायक, रीछपति जामवन जैसा वरिष्ठ और बुद्धिमान और महान पराक्रमी हनुमान हो, वहां पर तो किसी कार्य में कोई बाधा आ ही नहीं सकती।
ठीक है किष्किंधापति, अब आप अपनी सेना को आदेश दें।
जैसी आज्ञा प्रभु।
चले सकल वन खोजत सरिता सर गिर खोह राम काज लैली मन बिसरातन कर छो।
परमवीर हनुमान, नल और अंगद सुनो, जैसे कि हम सबको आशंका है, देवी सीता दक्षिण दिशा में ही गई है, तो हमारा दायित्व तो बनता है कि हम दक्षिण दिशा के चप्पे चप्पे को जान मारे। हमें पूरे मनोयोग से दक्षिण दिशा में देवी सीता को ढूंढना है।
रीचराज, आप इसकी चिंता ना करें, मैं देवी सीता को ढूंढने के लिए आकाश पाताल एक कर दूंगा।
हाँ रीचपति, लंकापति रावण से कहीं भी छिपा ले, मैं उन्हें अवश्य ढूंढ निकालूंगा, और जब तक मैं उन्हें ढूंढ नहीं लेता मैं चैन से नहीं बैठूंगा।
हाँ रीचपति, श्री राम की कृपा से संसार की कोई भी बाधा हमारा मार्ग नहीं रोक सकती। मेरे सामने जो भी नदी, पर्वत, समुद्र आएंगे, सबको पार करते हुए मैं माता सीता को ढूंढकर प्रभु श्री राम के पास अवश्य लाऊंगा।
हाँ, मैं खा जाऊंगा, सबको खा जाऊंगा। मैं जाने कब से भूखा था, भरपेट भोजन नहीं मिल रहा था। आज तुम सबको खाकर मन तृप्त हो जाऊंगा। विधाता मुझ पर कितना प्रसन्न है कि आज इकट्ठे इतने सारे वानर खाने को दिए। खा जाऊंगा, तुम सबको खा जाऊंगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं।
रीचपति, ये तो एक विशाल काय गीत है।
रुक जा, कौन है तू और क्या चाहता है?
मैं दिदराट संपाती हूँ, आज तुम सबको खा जाऊंगा, सबको खा जाऊंगा।
हे गीतराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, किंतु आप कैसे गीतराज हैं कि आप रक्षा के स्थान पर भक्षण की बातें कर रहे हैं? मैं तो गीतराज जटायु का कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने माता सीता को बचाने के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी।
क्या मेरे भाई जटायु की मृत्यु हो गई?
हाँ, लंकापति रावण श्री राम की पत्नी देवी सीता का बलपूर्वक हरण करके ले जा रहा था। मार्ग में गीधराज जटायु ने उसे देखा और उसे चुनौती दी। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। वृद्ध जटायु ने रावण पर प्राण घातक प्रहार किया। इस पर क्रोधित होकर रावण ने अपने खड्ग से उनके दोनों पंख काट दिए।
प्रभु, ये क्या हो गया? क्या अनर्थ हो गया?
हनुमान की बातें सुनकर गीधराज रोने लगे। अपने भाई की मृत्यु की कल्पना करके उन्होंने रोते हुए पूरी घटना के संबंध में विस्तार से पूछा।
हाँ गीधराज, पर आपके भाई जटायु ने तब तक प्राण नहीं त्यागे जब तक प्रभु श्री राम वहां नहीं पहुंच गए, और फिर प्रभु श्री राम को सारी घटना सुनाकर ही उन्होंने अंतिम सांस ली।
मेरे भाई को तो परम पद प्राप्त हो गया। मेरा कितना सौभाग्य होता यदि प्रभु श्री राम के कार्य में मैं सहयोग कर पाता। मुझे समुद्र तट पर ले चलो, मैं अपने भाई को तिलांजलि देकर अपना कर्तव्य पूरा करना चाहता हूँ। ले चलो मुझे, ले चलो।
अवश्य गीतराज, हम आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे।
ले चलो मोहे तुम सिंधु तट, दे सकूं तिलांजलि भ्रात, और प्रभु के भक्ति करूं, बस जीवन सफल हुई जात।
हे भ्रातृ जटायु, मेरी तिलांजलि स्वीकार करो। जटायु
गीधराज, आप हम सब में बड़े हैं और प्रभु श्री राम के भक्त भी हैं। हम सबको आशीर्वाद दें कि हम अपने कार्य में सफल हों और माता सीता का पता लगा सकें।
हे हनुमान, मैं वृद्ध हो चुका हूं, शारीरिक रूप से तो कोई सहायता कर नहीं सकता, किंतु मैं ये बता सकता हूं कि देवी सीता कहाँ है।
सच गीतराज, तो हमें शीघ्र बताएं कि देवी सीता कहाँ है।
मैं यहां से स्पष्ट देख रहा हूं कि देवी सीता लंकापुर के पंचवटी में बैठी है। उनके मन पर दुख के भाव है।
तब तो हमारे सामने लक्ष्य स्पष्ट है गीतपति। यदि आपको देवी सीता यहां से दिखाई पड़ रही हैं, तो हम अभी जाकर उनको वहां से उठा लाएंगे।
लेकिन वो स्थान यहाँ समुद्र तट से 100 योजन 4 कोस दूर है, और जो एक बार में समुद्र को पार करेगा वही देवी सीता तक पहुंच सकता है। आप सब लोग ये सुनकर शांत क्यों हो गए? इसमें बहुत अधिक चिंतित होने की बात नहीं, ये प्रभु का कार्य है। इसमें जो कुछ भी होगा सब उन्हीं की कृपा से होगा और शुभ होगा।
यहाँ पर पराक्रमी और अति बुद्धिमान नल, नील, युवराज अंगद और महावीर हनुमान है, और आप सबके साथ में, और आप सब जानते ही हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, और चाहकर भी 100 योजन नहीं जा सकता। क्यों नल और नील, आप दोनों का क्या कहना है, क्या मत है आपका?
रीचपति, मुझसे आप कोई बुद्धि का कार्य करा लीजिए, भला मैं समुद्र पार कैसे कर सकूंगा?
और रीचपति,
जहां तक मैं जानता हूं मैं 100 योजन पार कर सकता हूं, किंतु मैं लंका से लौटकर वापस आ सकूंगा ये नहीं कह सकता।
अरे नहीं अंगद, ऐसी बात नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लंका जा भी सकते हैं और समुद्र पार करके आ भी सकते हैं, किंतु आप हम सबके नायक हैं, इसलिए आपका हमारे साथ रहना और आगे की योजना बनाना अति आवश्यक है।
युवराज अंगद धर्म संकट में पड़ गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि समुद्र पार लंका किसको भेजें। अंगद को विचार मग्न देखकर रीचराज जामवंत ने हनुमान की ओर इशारा किया।
अब तुम ही संकट हरो और रखो हमरो मान, जाहि सिया की खोज करो, जाहि सिया की खोज करो, उड़ो प्रचंड हनुमान।
रामायण, मैं काल हूं, मैंने त्रेता युग की उन एक से बढ़कर एक घटनाओं को देखा है जिनके आधार पर परम पावन घटनाओं की रचना हुई। उन सब का मैं साक्षी रहा हूं। मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन के उन क्षणों को देखा है जब उनमें देवता से अधिक मानव स्वभाव दिखता था। सुग्रीव के निर्देश पर देवी सीता की खोज में चारों दिशाओं में सैनिक भेजे गए। दक्षिण दिशा में अंगद के नेतृत्व में हनुमान जैसे वीर गए। संपाती ने बताया कि देवी सीता को रावण ने अशोक वाटिका में छिपा रखा है, लेकिन संकट ये था कि ये 100 योजन समुद्र को पार कौन करे और कैसे?
इस 100 योजन समुद्र को केवल और केवल महावीर हनुमान ही पार कर सकते हैं।
पर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये विशाल समुद्र कैसे पार कर सकता हूं।
अरे ये कैसी बातें कर रहे हो हनुमान, तुम तो साक्षात बल का सागर हो, तुम असंभव को भी संभव कर सकते हो।
महावीर हनुमान, रीचपति जो भी कह रहे हैं अपने ज्ञान और अपने अनुभव से कह रहे हैं, इसलिए बिना किसी भी प्रकार के असमंजस और आशंका के आप अपने बल को स्मरण करें।
हाँ अंजनी कुमार, आप सक्षम हैं। भला संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो आपसे ना हो सके?
हे पवन कुमार, आपका 2 अवतार ही राम के कार्य के लिए हुआ है, इसलिए आप अपने मन में कोई भी संशय ना रखें और प्रभु श्री राम के कार्य को पूरा करें।
अंगद जामवंत और नल के इस प्रकार स्मरण दिलाने पर पवन पुत्र महावीर को उनका बल स्मरण हो आया और फिर एक चमत्कार हुआ। धीरे धीरे उनका शरीर बढ़ने लगा, वो विशाल होने लगे जैसे पर्वत, मानो वो पर्वत सोने का बना हो। पर्वताकार शरीर होते ही हनुमान ने सिंह के समान घोर गर्जना की।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारी सुमति के संगी।
मैं पवन तने अंजनी पुत्र हनुमान इस समुद्र को खेल खेल में ही दांगा करता हूं और रावण के पूरे वंशजों को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहां ला सकता हूं। हे ऋषपति, अब बताइए कि मेरे लिए क्या आदेश है।
हनुमान, आप केवल इतना करें कि देवी सीता से मिलकर आ जाएं और इसकी सूचना श्रीराम को दे दें। इसके बाद प्रभु श्री राम का जो आदेश होगा हम सब उसका पालन करेंगे।
ठीक है, तो मैं अब आपके आदेश से इस 100 योजन समुद्र को प्रभु श्री राम की कृपा से लांघने जा रहा हूं। जय श्री राम, जय श्री राम।
सिया राम का नाम ले उड़े पवन सुत घोर, उनके बल के सामने रहाना कोई छोर।
इतने साहसी और वीर होकर भी हनुमान चुप क्यों बैठे थे? क्या उन्हें इस बात का स्मरण नहीं है कि देवी सीता का पता लगाए बिना हमारा किष्किंधा लौटना असंभव है?
नहीं नहीं युवराज अंगद, हनुमान श्री राम के परम भक्त हैं। यदि हम सभी लौट भी जाते तो भी देवी सीता का पता लगाए बिना नहीं लौट सकते थे वे।
तब तो उन्हें बिना कुछ कहे ही लंका के लिए उड़ जाना चाहिए था।
हाँ, पर उन्हें उनके बल का स्मरण कराना पड़ता है। महर्षि अंगवहन ने उन्हें शाप दिया था कि जब तक उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण नहीं कराया जाएगा तब तक वो अपनी शक्ति भूले ही रहेंगे।
भला ऐसा शाप कोई क्यों देगा?
ये घटना उस समय की है जब हनुमान बालक थे। बचपन में वो इतने चंचल थे कि कोई भी ऋषि उन्हें अपना शिष्य नहीं बनाना चाहता था। माता अंजना उनकी शिक्षा के लिए बहुत चिंतित थी। एक दिन वो हनुमान को लेकर महर्षि अंगवहन के आश्रम पहुंची।
आपके ज्ञान के बारे में बहुत सुना है महर्षि, आपके एक शिष्य ने मुझे आपके पास भेजा है।
कहिए देवी, आप कहना क्या चाहती हैं?
मैं अपने पुत्र हनुमान को आपके शिष्य के रूप में देखना चाहती हूँ महर्षि। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ना नहीं कहेंगे।
कहाँ है आपका पुत्र?
नीचे, मैं आ गया ऋषिवर।
बचपन में हनुमान एक पल शांत नहीं बैठते थे। मां ऋषि अंग बहन के आश्रम में जाने के पूर्व वो अपनी चंचलता और अपनी असीम शक्ति से सबको कष्ट पहुंचाने के कारण कई आश्रमों से निकाल दिए गए थे। महर्षि अंग बहन के आश्रम में भी वो शांत नहीं रह सके।
हे ईश्वर, ये शोर कैसा? कहाँ है आपका पुत्र?
मैं यहाँ हूँ।
ये उस वृक्ष पर क्या कर रहा था?
प्रणाम महर्षि, मैं तो माँ के साथ ही था। अचानक मुझे लाल लाल फल दिखाई दिए तो मैं खाने चला गया। आप भी खाइए, लीजिए, बहुत मीठे हैं।
बहुत चंचल है आपका पुत्र,
किंतु आपकी कृपा से ये ठीक हो जाएगा।
ठीक है, मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ना चाहता देवी। आप इसे छोड़ दें, इसे मैं अपना शिष्य अवश्य बनाऊंगा। हनुमान, तुम आज से मेरे शिष्य हुए। प्रतिज्ञा करो कि इस आश्रम का अनुशासन सदा बनाए रखोगे।
गुरुदेव, मैं वो ही करूंगा जो आप कहेंगे। आप जो मना करेंगे उसे भूलकर भी कभी नहीं करूंगा।
इस प्रकार हनुमान महर्षि के आश्रम में ज्ञान पाने लगे, किंतु खेल खेल में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर छलांग लगाना, हाथियों का रास्ता रोक लेना, वृक्ष को उखाड़ लेना उनका हर दिन का काम बन गया था। दूसरे शिष्य गुरुदेव से हनुमान की शिकायत करते, पर वो कहां मानने वाले थे। एक दिन खेल खेल में ही उन्होंने एक शिष्य को हवा में ऐसा उछाल दिया कि उसके प्राण ही सूख गए। उसने आश्रम आकर गुरुदेव को रोते हुए बताया,
गुरुदेव गुरुदेव, हनुमान ने मुझे ऊपर उठाकर फेंक दिया, किसी प्रकार मेरे प्राण बच गए।
नहीं गुरुदेव, ये नीचे गिर रहा था तो मैंने इसे रोक लिया, इसे तनिक भी चोट नहीं आई।
पर तुमने ऐसा क्यों किया हनुमान? यदि इसे कुछ हो जाता तो हम इसके माता पिता को क्या बताते?
मैं कुछ नहीं होने देता गुरुदेव।
शांत रहो हनुमान, जाओ आज अकेले ही हवन पूजन की व्यवस्था करो, कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा।
अब पता चलेगा हनुमान को। देखो देखो, अग्नि बनता है, अब अग्नि भी नहीं प्रज्वलित कर पा रहा।
तुम लोग हंसते क्यों हो? देखो मैं एक ही भूख में कैसे अग्नि प्रज्वलित कर देता हूँ।
और हनुमान ने ऐसी फूंक मारी कि हवन कुंड की जलती लकड़ियां उड़कर शिष्यों पर जा गिरी और शिष्य जलन से चिल्लाते हुए भागे। गुरुदेव ने ये दृश्य अपनी आंखों से देख लिया और वो क्रोध में गरज पड़े,
हनुमान!
मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया गुरुदेव।
तुमने जो किया है वो मैंने स्वयं देखा है हनुमान, मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं कर सकता, कभी नहीं। जिस बल के कारण तुम पूरे आश्रम की चिंता का कारण बने हो, मैं अंग वंशज महर्षि अंगवान तुम्हें शाप देता हूं कि तुम अपनी शक्ति तब तक भूले रहोगे जब तक तुम्हें कोई स्मरण नहीं कराएगा।
नहीं गुरुदेव, नहीं नहीं गुरुदेव, ऐसा श्राप ना दे गुरुदेव।
मैं श्राप दे चुका हूँ हनुमान, अब यदि मैं चाहूँ तो भी वापस नहीं हो सकता।
महर्षि अंगवहन के इसी श्राप के कारण हनुमान आज भी अपनी शक्ति भूले रहते हैं, इसीलिए हमें उन्हें उनके बल का स्मरण कराना पड़ा। और देखना, वो देवी सीता का पता लगाकर ही लौटेंगे।
जय श्री राम।
ठहरो, तुम इस समुद्र को नहीं पार कर सकते।
हनुमान ने जैसे ही समुद्र में छलांग लगाई, समुद्र में एक भीषण तूफान उठा और उस तूफान से एक विकराल राक्षसी निकली जिसका नाम था सुरसा। सुरसा ने महाबली हनुमान का मार्ग रोक लिया।
उड़त नील आकाश आकाश में कर गर्जन घन घोर प्रकट भई सुरता तब ही प्रकट भई सुरता तब ही खड़ी राह पवन सुत रोक।
पुनः आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए पीवर प्रस्तुति रामायण, क्योंकि मन पावन तो जग पावन।
रामा।